नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास वाहक के रूप में उभर रहा है। आज राष्ट्रपति भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीक नहीं बल्कि भारत में सकारात्मक बदलाव का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि डेटा विज्ञान, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और डेटा विश्लेषण जैसे कौशल का देश में एआई प्रतिभा पूल विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा।
सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को एआई ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दशक में देश के जीडीपी, रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एआई का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का एआई टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे फील्ड की प्रभावी भूमिका होगी।
आयोजन के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों और सांसदों सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण लेने वालों को प्रमाण पत्र दिए। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र को कुशल बनाए चुनौती नाम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। इस चुनौती का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है।
श्री वैष्णव ने बताया कि 16 कोच वाली ये स्लीपर रेलगाड़ी 1000 से 1500 किलोमीटर की लंबी दूरी की यात्रा के लिए शुरू की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित हथियारों की निर्णायक भूमिका राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में संगठन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में DRDO मुख्यालय का दौरा कर सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस करके भारत की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DRDO की सराहना की। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रूप से पेंशन कोष स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। अब ये बैंक पेंशन कोष के प्रायोजक बनने के भी पात्र होंगे। प्राधिकरण के अनुसार इससे बैंकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी, पेंशन कोष प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और NPS ग्राहकों के हितों की रक्षा में सहायता होगी। वस्तु और सेवा कर GST संग्रह दिसंबर 2025 में वर्ष 2024 के इसी महीने की तुलना में 6.1% बढ़कर लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर 2024 में कुल GST राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक था। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना 1 जनवरी 2017 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। एयर मार्शल नागेश कपूर ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 5 जनवरी तक बहुत घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में कल घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।